This is Brad Milkey of ABC News' Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
Hey, it's Rick from upstairs.
Yeah, I take it seriously. When I play R&B at 1 in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive bass lines.
I only use expired batteries in my smoke detectors.
Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on.
Ooh, want to see how high I can jump?
Progressive can't save you from your upstairs neighbor.
No, wait, let me try again.
But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
HD Smartcast. You're listening to a Hindustan Times production brought to you by HD Smartcast.
A discussion on the farm laws has just begun this week in Parliament. And in Rajya Sabha, it has come in the midst of major protests, which have now attained an international perspective as well, with many influencers, high-profile people on social media talking about the farm protests. Now, amidst all of that, there was an interesting kind of take on the farm protests from JDU newly appointed president RCP Singh, who incidentally used to be the top bureaucrat in the agriculture ministry under Nitish Kumar, chief minister of Bihar, who was at that time agriculture minister. RCP Singh, sir, thank you so much for speaking with Hindustan Times. I want to start by asking you that we heard your speech in Rajya Sabha. Or, you know, what was really interesting about it is that you defended the reform and the kind of thing that it promised, bringing up the whole aspect of how it has benefited Bihar. But you also said, sir, that there should be dialogue. There should be a constant kind of talks should go on. Now, in this context, when you see this morning that opposition leaders were not allowed to go to the protest site, what would your reaction be?
देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो farm laws है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में कृषि जो लाभकर हो, किसानों की आमदनी बढ़े और देश के विकास में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो भी बढ़े। अगर आप तीनों लॉज को देखें, पहला लॉज क्या है कि अभी लॉ बनने के पहले जो स्थिति थी, ज्यादातर प्रदेशों में बिहार को छोड़ करके, उसमें था कि किसान जो उनकी उपज है उसको सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही बेच सकते हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता था। इस कारण किसानों को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। और मंडी परिषद में, फिर बता रहा हूं आपको, मैं तो, मुझे दो स्टेट्स का अनुभव है, उत्तर प्रदेश का और बिहार का,
जहां पे उत्तर प्रदेश में आप पोस्टेड थे,
ये बिल्कुल ही जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है। और इसीलिए बिहार में तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, एनडीए सरकार बनी, तो 2006 में ही जो एपीएमसी एक्ट है उसको समाप्त कर दिया गया। और किसानों के पास अभी ऑप्शन है, और अभी जो केंद्र ने कानून बनाया उसमें ये ऑप्शन बहुत स्पष्ट है कि जिन प्रदेशों में अगर मंडी है और किसान अगर अपनी उपज को मंडी में बेचना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं वो, लेकिन उनको एक और ऑप्शन मिल गया है कि अपने सामान को, अपनी उपज को वो देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। अब बताइए साहब, इसमें कौन सा किसान विरोधी बात होगी? आपके पास ऑप्शन है, आपको कौन रोकता है कि अपनी मंडी में सामान बेचे? उसमें तो है ही, उसको समाप्त नहीं है बेचने की, लेकिन एक और उनको रास्ता मिल गया है। अब आप आइए दूसरा, दूसरा क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है। आप चले जाइए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हो ही रहा, जिनके नाम से जमीन है, खतौनी में भी दर्ज है नाम, जो जमीन के ओनर हैं वो खेती नहीं कर रहे, और जिनके नाम से जमीन नहीं है, जो खेतिहर मजदूर हुआ करते थे या जिनके पास कम जमीन हुआ करती थी, वो खेती कर रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है, कहीं साल भर का होता है, कहीं 2 साल का होता है, लेकिन वो खतरा हमेशा बना रहता है। कोई कह देता है कि साहब शेयर क्रॉपर अगर ले लेगा तो क्या होगा, तो ये जो कानून बना है इसमें देखिए दो चीज बहुत स्पष्ट है, जमीन है जो उसके ओनरशिप किसान के पास ही रहेगा
जी,
वो ओनरशिप समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन आप जरा देखिए, सब लोग बात करते हैं कि सर कृषि में भी प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नॉट मतलब इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। अब आज आप देखिए धीरे धीरे कृषि का नेचर बदल रहा है, लोगों के फूड हैबिट्स बदल रहे हैं। अब शहरों में आपको चटनी चाहिए, सॉस चाहिए, क्या खाइएगा आप, चाहिए सॉस जो चीज भी लाते हैं। लेकिन अगर कोई भी, हम सिर्फ कंपनी की बात नहीं बोल रहे हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर किसान है गाँव में ही, आप बाहर छोड़ दीजिए गाँव में ही, आप मेरे ही गाँव को आप लेकर चलिए, मेरे ही गाँव में जमीन है, वहाँ हमारा कुछ किसान है जिसके पास अगर 1 बीघे जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, वो 10 एकड़ पर खेती करता है, ले लेता है, जिससे कि थोड़ा उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल जो कहते हैं उसको मिलता है। तो इससे ना सिर्फ बार बार क्या कहा जाता है कि MNC आ जाएगा, भाई जो भी लोग अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो जो हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उसका वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, आप टमाटर उपजाना चाहते हैं, आप आलू उपजाना चाहते हैं, आप कोई फसल उपजाना चाहते हैं, आप वहां करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर वॉलंटरी होता है ना, इट्स नॉट फोर्स्ड। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा, जो मैंने कहा था राज्यसभा में भी, कि बता दें कि कहीं भी इस कानून में लिखा है कि जो हमारा जो फोर्स किया जाएगा कोई भी हमारा लैंड होल्डर है कि आप फलाने से कॉन्ट्रैक्ट करें ही, क्योंकि वॉलंटरी है, उसके ऊपर है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो स्वाभाविक है कि अपनी इच्छा से कर रहा है, उसमें कहीं भी कोअर्शन नहीं है। और उसको उसमें ये भी है कि साहब अगर हमने तय किया कि भाई हम इस सीजन में हम आपकी जमीन लेना चाहते हैं, हम आपको इतना देंगे इसके, उसमें क्या आपत्ति है, उसको भी किसान को भी पता चल गया कि भाई हमको इतना मिलेगा, तभी ना वो देगा, नहीं तो क्यों देगा। तो इसलिए देखिए उसमें भी कहीं भी खतरा कहां होता है कि जहां उसकी ओनरशिप पर खतरा होता
है। बिल्कुल सर, ये रिफॉर्म की बात तो सब मान रहे हैं कि
तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला जो कानून पर भी देखिए, तीसरा वाला जो हुआ गया है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो आपको बनाया जाता था कि आप इतना ही रख सकते हैं, अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब का है, 1954-55 का है। उस समय अपने देश में क्या था, स्कार्सिटी की इकोनॉमी थी, शिप टू माउथ PL-48 का अनाज हम लोग के पास आता था, और आज देखिए सरप्लस है। तो वो जो उस समय जो इस चीज की बात होती है कि इससे ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते हैं, और भंडारण नहीं करने के चलते ही किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए था, मतलब आप चलिए प्याज हमारे यहां होता है, हम लोग का प्याज कई बार खेत में क्यों रह जाता है, क्योंकि भंडारण की सुविधा नहीं है, तो औने पौने दाम में किसान को बेचना है, और जितना प्याज को उसको उखाड़ने में लगेगा उतना कीमत भी नहीं मिलता, तो खेत में प्याज रह जाता है। उत्तर प्रदेश में कई बार आलू खेत में ही रह जाता है। तो जब भंडारण क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसमें लोगों को मिलेगा। तो आज हमारा सरप्लस का है तो हम क्यों स्कार्सिटी वाले कानून को रखे रखें, और फिर इस कानून में व्यवस्था भी है कि अगर इस तरह की बात होती है तो उसको किया जा सकता है। तो मैंने जिस बात की चर्चा की, इसमें कहीं भी तीनों में, देखिए मेरा बहुत सिंपल है कि तीनों में कहीं भी कोई किसान विरोधी बात नहीं। हंगामा किस बात पर है, हंगामा है MSP पर, कि साहब अगर ये कानून लागू होगा तो सरकार MSP खत्म कर देगी। कैसे खत्म कर देगी, कैसे खत्म कर देगी, आज भी MSP दिया जा रहा है, आज भी मिल रहा है। और MSP पर देखिए, MSP पर आप जो है डिबेट कर सकते हैं, भाई MSP जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, इसने कहा कि भाई जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से जो उसका मार्केट रेट होगा उसका लागत मूल्य का 1.5 हम देंगे। अब वो एक अलग चीज है कि भाई कैसे उसका रेट निर्धारित करते हैं, इन कम से कम देखिए इन प्रिंसिपल ये तो एग्रीड है। तो MSP खत्म करने की कहीं बात नहीं। अब वो लोग कहते हैं कि सर कानून में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तो बात किया जा सकता है ना, वो तो बात कह सकता है कि सर खतरा अगर उनके मन में है कि हमारा एमएसपी समाप्त हो जाएगा इन फार्म लॉ के, तो जब केंद्र सरकार तैयार है, आपसे बात करने को तैयार है, एमएसपी पर सब खरीदा जा रहा है, तो क्यों इसको इशू बनाया जा रहा है?
लेकिन सर, मैंने आपको थोड़ा सा अलग प्रश्न पूछा था, वो ये था कि जो लोग वहां पे, क्योंकि हमारी ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन के नेता, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो जाके मिलना चाहते थे, उनको रोका गया, क्या आप उसे सपोर्ट करते हैं कि उनको रोका जो
देखिए 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 ये हमारे जो नेता है हाउस में भी बोले हैं सब, ये किसानों का आंदोलन है, और किसान लोगों ने जो जैसा बता रहे हैं वो, कि किसान लोगों ने कहा है कि भाई यहां पर हमारी कोई पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है कि देखिए एक बात बता देते हैं, इस मुद्दे पर कौन सहमत नहीं है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, कौन सहमत नहीं है कि खेती लाभकर होना चाहिए, सब सहमत हैं। लेकिन अगर आप देखिए, किसान एक किसान संगठन होता है, और एक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसमें जाती है, तो देखिए जैसे आप पॉलिटिकल एजेंडा में लाइएगा, तो फिर पार्टी, जब आपको कभी मौका मिलेगा, आप सरकार बनी है, लागू करिए, उसमें पॉलिटिक्स जब आप करते हैं ना, तो पॉलिटिक्स क्या चीज है, पॉलिटिक्स जब आप करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना एजेंडा लेके जाते हैं, आप मैनिफेस्टो अपना रखते हैं कि हमको जब जनता अवसर देगी तो हम ये करेंगे। अब जनता ने अवसर दिया है तो अपना जो है उसमें एग्रीकल्चर के बारे में उसको लोग लागू कर रहे हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी वहां जा रहे हैं, तो बात तो अपनी यहां रख ही रहे हैं, पार्लियामेंट की बड़ी जगह कहां पर हो सकती है, बताइए ना जरा। देखिए हम लोग, जो मैंने कल भी कहा था,
सबका प्रयास गलत नहीं है,
देखिए सबका प्रयास क्या होना चाहिए, प्रयास देखिए आप पॉलिटिकल माइलेज लेने पर मत रहिए।
अच्छा,
देखिए बिल्कुल,
तो वो जो
उसे कभी भी किसी का फायदा नहीं होता।
ठीक है, तो आपका ये स्टैंड क्लियर हो गया कि वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए जा रहे थे, तो वो नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन सर, आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में काफी चल रहा है कि कैसे उन लोगों ने वो जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, रोड ब्लॉक्स, और फिर उन्होंने कांटे लगा दिए हैं, स्पाइक्स लगा दी है हर जगह इस टाइप का, और वहां पे वो फार्मर्स जो वो कह रहे हैं पानी बंद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो तो
देखिए एक बात मैं बता देता हूं आपको, इस चीज को जरा सा बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, हम लोगों को मूल में जाना चाहिए, आखिर वहां बैठे हुए हैं किसान, सरकार भी अपने तरफ से ऑफर किए हुए कि बातचीत होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं, देखिए घटना 26 जनवरी को जो घटना है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए सब लोगों को, कि जब किसी तरह किस तरह का आंदोलन होता है, तो बहुत बार कई इस प्रकार के एलिमेंट भी आ जाते हैं जिनको मौका मिलता है और चीजों को वो दूसरा रूप दे देते हैं। आज के समय में जहां इतनी बड़ी भीड़ हो, आप इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, मैं तो प्रशासन में रहा हूं ना, आप चांस नहीं ले सकते हैं, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कोई इस तरह की घटना ना घट जाए। देखिए इस बात को हमेशा, क्योंकि ऐसा मत समझिए कि भाई जो किसान है उनको क्या ही सबसे लेना देना है, उनकी तो अपनी मांग है, उसको उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट भी समाज में होते हैं जो समाज में इस तरह की स्थिति चाहते हैं। अब जो घटना हुई 26 जनवरी, कोई तो सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो क्या करेगी। अच्छा आप याद करिए, ये जो पुलिस वाले सबके साथ घटना हुई, ये पुलिस वाले कौन है, कोई अंग्रेज की पुलिस है, ये सारे पुलिस वाले हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं, और देखिए इनका इनकी ड्यूटी है, आखिर कानून का राज रहेगा ना, लोकतंत्र में ये तो है नहीं कि साहब कानून का राज नहीं रहेगा। तो पुलिस वहां बैठ जाती है, उस पर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो समझिए पुलिस को, मैं जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनके जो धैर्य की मुझे बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं रहा हूं ऐसे में, बिल्कुल जो होता है आखिर वो भी एक ह्यूमन बींग है।
तो सही,
तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का एलिमेंट अगर घुस गया तो स्थिति को और तनावपूर्ण कर सकता है। हम लोग करना क्या चाहिए, तनाव को खत्म करें, तो क्या जरूरत उस कांटे लगाने की।
तो इस वजह से जो यूएस ने कल उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट ने हमारे बारे में स्टेटमेंट दिया है कि जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, तो इंटरनेशनली हमारा जो हमारे खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ह्यूमन राइट्स की स्टेटमेंट्स, क्योंकि अब अमेरिका जो कि वैसे हमारा तो अगर अमेरिका से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो वेल नोन एक्टिविस्ट हैं जैसे ग्रेटा थनबर्ग जो कि ये वो लोग बोल रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता है कि भारत को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जहाँ पे हम लोग एक प्रदर्शन नहीं करने देते हैं लोगों को?
देखिए अमेरिका को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका आजाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। ऑलमोस्ट 171 साल पहले हमसे आजाद हुआ। और ये मानते हैं वहां की भाई लोकतंत्र की जड़ें मजबूत थी। क्या हुआ सर? अभी अमेरिका जो बोल रहा है भाई, ट्रंप साहब चुनाव हार गए, हमारे यहां देश में लोकतंत्र जो है कितना मजबूत है कि हमारे यहां कोई हारता है तो स्वेच्छा से अपने हार को स्वीकार करता है। ट्रंप साहब ने क्या किया साहब? वो अमेरिका, जिस अमेरिका का राष्ट्रपति हारता है, अपने लोगों को कहता है कि भाई जो कैपिटल हिल है उस पर आक्रमण करो, और वो हमको पाठ पढ़ा रहा है। हमको क्या पाठ पढ़ाएगा? देखिए एक बात मैं बता दूं, अपने हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा है, और पूरा का पूरा हमारा जो जानते हैं प्लूरल सोसाइटी है, हमारा पूरा डाइवर्स सारी चीजें हैं, और इसको आप सिर्फ एक जो ह्यूमन राइट्स की एक अपना जो एक टेलीस्कोप लगा के देखते हैं उसमें फिट ही नहीं करता है। देखिए यहां पर आप जरा देख लीजिए, हमारा अभी पार्लियामेंट चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अमेरिका से हमको क्या सीखना है इस पर? अमेरिका में क्या हाल है? आप जरा सुनिए, वहां ब्लैक्स के साथ क्या किया था, जो घटना हुई, आप फोटो को याद करिए,
जॉर्ज फ्लॉयड की बात
करिए, याद करिए जरा किस तरह से उसको घुटने दे करके उनको जो है उनकी हत्या की गई। आज देखिए जिस अमेरिका में ब्लैक्स की क्या स्थिति है। हम अमेरिका को सोशल इश्यूज पर हमारा समझिए कि वो आइकॉन नहीं हो सकता है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारा जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हिंदुस्तान का हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जहां सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द है, भाईचारा है, ये वो नहीं कर सकता है। वहां तो जो नस्ल के आधार पर
बस, जैसे वहां पे रेस है, हमारे यहाँ पे कास्ट इश्यूज है, कास्ट क्राइम्स हर रोज होते हैं, तो लोग कहेंगे कि हर,
देखिए कास्ट क्राइम आज हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं। आप जरा देखिएगा ग्रेजुअली, अगर आप देखिए, आप देखिए होता क्या है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। अब कहीं पर दो व्यक्ति झगड़ा कर लेता है, और गांव में रहते हैं लोग, तो किसी न किसी दो कास्ट के हो गए, तो वो कास्ट का उसको आप नहीं दे सकते हैं। झगड़ा जमीन का है, झगड़ा किसी और चीज को लेकर के है। कास्ट का जो कास्ट लाइन पर जो पहले ये होते थे, वो समझिए हमारे 2005 के पहले बिहार में होते थे, जहां नरसंहार हो जाता था, एक जमाने में बहुत पहले और सब प्रदेशों में भी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हुई है। अपने देश में देखिए आजकल इस सब चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करता, और उसमें आप लोगों का रोल बहुत अच्छा है। आजकल कोई चीज जब होगा तो आप मीडिया के लोग जाते हैं, चीजों को देखते हैं, तो आज कोई हिम्मत नहीं करता है।
सर आप तो इस रिफॉर्म्स को एक्चुअली जो लोग अपोज कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन वाले वो कह रहे हैं कि इस बात पर ना बातचीत, जो कि आपने भी कहा, बातचीत इनफ नहीं हुई है। जो सिलेक्ट कमिटीज की बात है, जो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फॉर्म है वो सब नहीं हुआ, और इस वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको 18 महीने के लिए आप स्टे कर दीजिए, इसको अबेंस पे रख दीजिए। तो आप मानेंगे कि शायद वो एक गलती हो गई आपके, मतलब NDA सरकार से, कि उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान चाहिए, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट करवा रही है कि आप लोग इसको और इस पर कंसल्टेशन कीजिए। क्या कंसल्टेशन में चूक रह गई है, क्या आप मानेंगे?
नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। देखिए कोई भी जब बिल आता है पार्लियामेंट, पहली बार ये नहीं आ रहा है, बिल हमेशा आते रहे हैं, बिल आता है पार्लियामेंट की डिबेट में आप भाग लेते हैं, पार्लियामेंट का हमारे यहाँ सिस्टम है, भाग लेते हैं, अपनी बात को रखते हैं, आपका सुझाव होता है कि आप सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। निर्णय कैसे होता है? निर्णय होता है जो पार्लियामेंट में जो उपस्थिति है, और सिलेक्ट कमेटी में जाता है, सिलेक्ट कमेटी में क्या होता है जरा आइए उस पर भी। सिलेक्ट कमेटी में भी तो हम ही लोग रहते हैं, कोई बाहर के लोग तो आता नहीं, और पार्टी लाइन पर ही लोग बोलते हैं सिलेक्ट कमेटी में भी। इस तीनों बिलों पर विस्तार से चर्चा हुई है,
बट और पैसेज के टाइम पे तो चल ही नहीं रहा है, बॉयकॉट कर रहे हैं।
सुन लीजिए बॉयकॉट क्यों की, यही प्रॉब्लम है ना। देखिए प्रॉब्लम यही होती है, लोकतंत्र में हमेशा जो है ना आपको चीजों को फुल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। आपने पूरा का पूरा डिबेट में हिस्सा लिया, अपनी बात कर दी, अब पैसेज की बात आई, पैसेज की बात आई, आप ये लोग जो थे इनकी जो भी इच्छा रही हो, लेकिन आप लोगों ने जो जो लोगों ने उसमें डाला था अपना अमेंडमेंट, बिल कोई पास होता है क्लॉज बाई क्लॉज चलता है, अमेंडमेंट जब डालते हैं तो जो अमेंडमेंट करने वाला है उस व्यक्ति को अपने सीट पर रहना पड़ेगा, जो प्रक्रिया है। आप अपने सीट पर ही नहीं है और आप हंगामा कर रहे हैं। देखिए आपका आपकी नियत, आप डिबेट में हिस्सा लिए, आपको पूरी दृढ़ता के साथ अपने अमेंडमेंट को वहां पर लाना चाहिए था और उसमें हिस्सा लेना चाहिए था, आप दूसरा ही रूट ले लिए। इसलिए देखिए ये कहना कंसल्टेशन अच्छा, जब सब पार्टी ने हिस्सा लिया है, निकाल लीजिए सबके नाम है, 37-38 लोगों ने हिस्सा लिया है।
बट सर आपके एनडीए के दो एलाइज छोड़ के चले गए हैं बस इसी बात पे, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम।
नहीं देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए सवाल होता है ना स्टेट स्पेसिफिक इशूज होते हैं, अपना अपना स्टेट में आप राजनीति करते हैं इशूज होते हैं। चूंकि पंजाब में देखिए एक बात स्पष्ट है, पंजाब में मंडी का एक रोल रहा है और मंडी से पंजाब में एक अच्छी खासी आमदनी भी सरकार की होती है, तो स्वाभाविक है, और पंजाब में पार्टी की सरकार है तो स्वाभाविक है कि जो राजनीति करते हैं उनको लगता है कि हमारे स्टेट में लोगों की मानसिकता क्या है। हमारे बिहार में तो मंडी खत्म हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां के लोग जानते थे कि मंडी जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन पंजाब में लोगों को लगा होगा।
बट एनडीए ने भी तो सोचा होगा कि हमारे अपने लोग हैं, ये इतने पुराने हमारे एलाइज हैं, 90s से चले आ रहे हैं, जो बादल जो हैं, अकालीज जो हैं, और फिर राजस्थान के भी ये है, तो उन्हें रखना, एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं, तो उससे आपको लगता है कोई चिंताजनक बात नहीं?
देखिए संबंध में
उनको मना लेते हैं, बात कर लेते हैं,
संबंध में हमेशा रखा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई बात आपके साथ किसी का संबंध है, आप बात तो करिए, करते ही है ना। अब कहीं पर कई बार होता है कि आप अपने बच्चे से ही बात करते हैं, वो नहीं मानता है, क्या करेंगे बच्चे को, कहेंगे ठीक है अपना रास्ता रखो भाई, आपने कहा कि बेटा तुमको फिजिक्स पढ़ना होगा, ना मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है, तो क्या करेंगे, नहीं तुम फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो बाहर जाओ, ऑप्शन। और लोकतंत्र में तो ऑप्शन रहता ही है ना, हम सहमत नहीं है तो हम क्या करेंगे, लोकतंत्र में तो सहमति असहमति सब महत्वपूर्ण होता है।
तो सर क्या इसी, तो आप लोगों की बात जो कि आई मीन जो संडे पार्लियामेंट शुरू होने से पहले संडे आई थिंक वीकेंड को जो मीटिंग थी, उसी वाले मीटिंग में क्या आप लोगों की बात सुन के फिर देन एलजेपी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि पहले तो बुलाया गया था उनको सर?
नहीं देखिए हमको एनडीए में किसको बुलाया जाता है ये तो देखिए, जो चूंकि एनडीए में यहाँ पर माने हमारे नेता तो भाई प्रधानमंत्री जी हैं, और स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है तो लोग सहयोग करते, किसको बुलाए हैं किसको नहीं बुलाए हैं वो तो उनका उस पर कहेंगे, हम लोग इसमें क्या करना होता है।
बट एनडीए में सेंट्रल में केंद्र में क्या एलजेपी और जेडीयू दोनों हैं सर?
देखिए
क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप समझ
लीजिए। देखिए बिहार के बारे में बता दूं, देखिए जिस जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो कहां है जो वो जाने, लेकिन उनका रोल बिहार में बहुत ही घृणित था। पार्लियामेंट के चुनाव में इनके सारे उम्मीदवारों को हम लोगों ने जिता के भेजा, और विधानसभा में एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए, हमारे एक उम्मीदवार के खिलाफ ज्यादा नंबर दिए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी खड़ा किया, हम पार्टी के खिलाफ भी कैंडिडेट दिया। देखिए भाई हम लोग तो देखिए स्टेट वाले हैं कि हमने जिसको मदद किया लोकसभा में विधानसभा में उसका कर्तव्य बनता था, नहीं किया बिहार में, तो हम लोग तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हम लोग इसकी चिंता नहीं करते।
Well, that was a conversation, and that brings us to the end of this episode of On the Record. If you would like to share your views on it, do tweet me at Sunetra C or at HD Smartcast. Send in your feedback, and I'll be back with another episode. So join us then. Goodbye.
This was a Hindustan Times production brought to you by HD Smartcast.
HD Smartcast.
I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Miles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.